गुरु अमरदास 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी। गुरु अंगद ने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य अमरदास को चुना। गुरु अमरदास हिंदुओं के वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। 60 वर्ष की आयु में वह गुरु की सेवा में आए। वह गुरु अंगद से आयु में 25 वर्ष बड़े थे और जब उन्होंने गुरु की गद्दी प्राप्त की तब उनकी आयु 73 वर्ष की थी। उस समय तक सिखों का कोई केंद्रित तीर्थ स्थान नहीं था। गुरु नानक ने अंतिम वर्ष करतारपुर में व्यतीत किए थे और गुरु अंगद ने खादूर में अपना अधिकांश समय बिताया था। गुरु अमरदास ने गोइंदवाल को अपना निवास स्थान बनाया। वहां उन्होंने पानी की एक बड़ी बावड़ी का निर्माण कराया। गोइंदवाल वर्षों तक गुरु की गद्दी का स्थान बना रहा और बावड़ी के पानी के बारे में यह किंवदंती प्रचलित हो गई कि वह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर कर सकता है। गुरु अमरदास स्वयं बहुत साधारण भोजन करते थे जबकि उनके लंगर में सभी हिंदू और मुसलमानों को एक बहुत अच्छा भोजन मिलता था। गुरु अमरदास ने लंगर व्यवस्था में एक और परिवर्तन कर दिया। उन्होंने अपने मिलने से पहले प्रत्येक व्यक्ति के लिए लंगर में भोजन करना आवश्यक कर दिया। जो व्यक्ति लंगर में भोजन नहीं करता था उसे गुरु का मिलने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार गुरु अमरदास ने हिंदुओं की जाति व्यवस्था को समाप्त करने का आधार लंगर व्यवस्था को बनाया। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि दिवाली त्यौहार के अतिरिक्त सिख संप्रदाय के व्यक्तियों की सम्मिलित बैठकें वैशाख माह और माघ माह के पहले दिन हो। संभवतया उनका उद्देश्य सिखों के उत्सवों और त्योहारों को हिंदुओं के उत्सवों और त्योहारों से अलग करके सिखों को हिंदुओं से पृथक अस्तित्व प्रदान करना था। गुरु अमरदास के समय में पारिवारिक सिख और साधु सिखों में स्पष्ट अंतर किया गया। गुरु अमरदास ने हिंदुओं में प्रचलित सरती प्रथा और प्रदा प्रथा का विरोध किया तथा स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थान दिया। उन्होंने नशीले पदार्थों मुख्यतया शराब के प्रयोग का भी विरोध किया। उन्होंने विवाह पद्धति को सरल बनाया और सिखों के लिए हिंदुओं से पृथक विवाह पद्धति जिसे लवन पुकारा गया प्रचलित की, जिसमें विवाह पद्धति को बहुत कम खर्चीला बनाया गया। इसी प्रकार उन्होंने सिखों के मृतक संस्कार को भी सरल बनाया। उन्होंने ऐसे अवसर पर सिर्फ गुरु के उपदेशों की पाठ की व्यवस्था की और मृतक की राख अथवा हड्डियों को गंगा में बहाने की आवश्यकता को नगण्य बताया। इस प्रकार गुरु अमरदास ने कई ऐसे कार्य आरंभ किए जो हिंदुओं से सिखों को पृथक करते थे। गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार के लिए बहुत कार्य किया। उन्होंने हिंदुओं के तीर्थस्थानों की यात्राएं की। गुरु नानक ने तीर्थ यात्राओं को आवश्यक नहीं बताया था। गुरु अमरदास का आशय संभवतया तीर्थ का था भी नहीं। उन्होंने ये यात्राएं इस कारण की ताकि वहां पर एकत्रित भीड़ में से उन्हें अधिक मात्रा में अपने शिष्य प्राप्त हो सके। उनके समय में सिख संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई, इसमें संदेह नहीं। अपने बढ़ते हुए अनुयायियों को धार्मिक उपदेश एक स्थान से दिया जाना संभव न होता देखकर गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति की जिसका कर्तव्य गुरु के उपदेशों का प्रचार करना। इससे भी सिख अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई। मुगल बादशाह अकबर ने गोइंदवाल जाकर गुरु अमरदास से भेंट की थी। अकबर उनसे प्रभावित हुआ और गुरु के लंगर के व्यय के लिए उन्होंने कुछ गांव भेंट स्वरूप देने चाहे जिससे गुरु ने मना कर दिया। तब अकबर ने गुरु की पुत्री बीबी भानी के नाम से कई गांव उन्हें प्रदान किए। गुरु अमरदास ने भी नानक के उपदेशों को संकलित किए जाने का कार्य को जारी रखा और स्वयं भी कुछ रचनाएं की। इन्हें बाद में आदि ग्रंथ में सम्मिलित कर लिया गया। गुरु अमरदास की रचनाएं बहुत सरल भाषा में तैयार की गई थी, यद्यपि उन पर अध्यात्मवाद की झलक स्पष्ट है। उन रचनाओं में आनंद नामक पद रचना को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। गुरु अमरदास ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी पुत्री बीबी भानी के पति रामदास को गुरु का पद प्रदान किया। गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघे भूमि की दी और जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। इस भूमि और उनकी पत्नी बीबी भानी के अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि अमृतसर का शहर बना। उसका निर्माण गुरु अमरदास के समय में ही आरंभ हो गया था। गुरु रामदास के समय में भी यह कार्य चलता रहा और वहीं पर एक तालाब अमृतसर के नाम से बनाया गया। पहले उस तालाब का नाम रामदासपुर रखा गया था, परंतु बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर अपने उसका नाम अमृतसर पड़ गया। गुरु रामदास का समय थोड़ा रहा, परंतु तब भी उनके समय में सिख संप्रदाय की संगठन शक्ति में वृद्धि हुई। गुरु रामदास ने ही यह विचार दिया कि गुरु की आत्मा स्वतः ही अगले गुरु के शरीर में प्रवेश कर जाती है, इस कारण सभी गुरु समान हैं, सभी गुरुओं की आत्मा समान है, और यदि अंतर है तो शरीर मात्र का। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन का गुरु का पद सौंपा। उन्होंने ही इस प्रकार सिखों के गुरु के पद को पैतृक बनाए जाने की व्यवस्था आरंभ किया। उनके पश्चात सिख गुरु का पद उनके परिवार से बाहर के किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया। अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने अपने सभी पुत्रों की मृत्यु हो जाने के कारण सिखों से गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। उनके पश्चात सिखों का कोई गुरु नहीं रहा। पैतृक आधार पर गुरु परंपरा को आरंभ किए जाने से सिख संप्रदाय को संगठित करने में सहायता मिली, क्योंकि अनुयायियों की आस्था एक विशेष परिवार के सदस्यों तक ही सीमित हो गई। गुरु अर्जुन 1581 से 1606 ईस्वी। गुरु पद को प्राप्त करने के अवसर पर अर्जुन की आयु 18 वर्ष की थी। तभी उन्होंने अपने समय में सिख संप्रदाय को शक्तिशाली बनाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। उनके बड़े भाई पृथ्वीचंद ने, जिसे गुरु रामदास ने गुरु की गद्दी सौंपने से इनकार कर दिया था, आरंभ से ही उनके मार्ग में बाधाएं डाली। उसने स्वयं को गुरु घोषित किया, एक मंदिर बनवाया, दो तालाब बनवाए और एक धार्मिक ग्रंथ की रचना आरंभ की। इस प्रकार उसने एक विरोधी सिख संप्रदाय बनाने का प्रयत्न किया और कुछ मात्रा में सफल भी हुआ, परंतु इसमें भी बड़ी कठिनाई सिख संप्रदाय के विस्तार के कारण ही थे। स्वयं गुरु अर्जुन ने अपनी यात्राओं द्वारा सिखों के धर्म के लिए धन लेकर सिख अनुयायियों की संख्या में बहुत वृद्धि की, जिसके कारण सिख संप्रदाय में विभिन्न जातियों, व्यवसायों तथा गांव और नगरों के व्यक्ति सम्मिलित हो गए। ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने एक समूह में एकता बनाए रखना कठिन कार्य था, परंतु गुरु अर्जुन इस कार्य में सफल हुए। गुरु अर्जुन ने रामदासपुर नामक पूर्ण किया और उसमें अमृतसर और संतोषसर नामक दो तालाब बनवाए। ये कार्य उनके पिता गुरु रामदास द्वारा अधूरे छोड़ दिए गए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य में ईश्वर का मंदिर हरि मंदिर बनवाया, जिसमें चार दरवाजे रखे गए थे, जिसका अर्थ था सिख संप्रदाय में हिंदुओं के चारे वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते थे। उनका आशय रामदासपुर को एक तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित करने का था, जहां सभी स्थानों के सिख एकत्रित हो सकें। पवित्र तालाब, मंदिर और गुरु सिख अनुयायियों के आकर्षण के केंद्र बिंदु बने और सिखों में एकता और समानता हो सके, यह गुरु अर्जुन देव का उद्देश्य था। तालाब, मंदिर और रामदासपुर के निर्माण के लिए गुरु अर्जुन को धन की आवश्यकता हुई। गुरु अमरदास के समय तक गुरु का लंगर उनके शिष्यों के स्वेच्छा से दिए गए धन के द्वारा चलाया गया। जब गुरु रामदास ने अमृतसर के तालाब और रामदासपुर नगर के निर्माण कार्य को प्रारंभ किया। तब उन्होंने अपने अनुयायियों का धन एकत्रित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अपने प्रतिनिधि भेजे, जिनको रामदासी पुकारा गया था। गुरु अर्जुन के समय में गुरु के इन प्रतिनिधियों को मनसद और मेउरा पुकारा गया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर संगतों की स्थापना की, जो धर्म प्रचार का साधन बनी, और साथ ही साथ उन्होंने गुरु कार्य के लिए अनुयायियों से धन भी एकत्रित किया। आरंभ में अनुयायियों से धन स्वेच्छा के आधार पर लिया गया था, परंतु गुरु अर्जुन ने उसे अनिवार्य कर दिया और प्रत्येक सिख से उसकी आय का 1/10 हिस्सा मांगा। इससे गुरु के पास अस्थाई आय की व्यवस्था हो गई और उनके पास धन की कमी नहीं रही। गुरु अर्जुन ने स्वयं भी धर्म प्रचार का कार्य किया। उन्होंने मध्य पंजाब का दौरा किया, जहां जाट किसानों का बाहुल्य था, और बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने सिख धर्म परिवर्तित किया, जिसका प्रभाव गंभीर रूप से सिख संप्रदाय पर पड़ा। जब सिख संप्रदाय को सैनिक संप्रदाय में बदलने का प्रयत्न सिख गुरुओं ने आरंभ किया, तब जाट किसान ही इसमें सबसे आगे आए। गुरु अर्जुन ने वहां तरन तरा नामक नगर को बसाया और वहां पर भी एक तालाब बनाने के कार्य को आरंभ किया। धीरे धीरे उस क्षेत्र में सिखों के 4 तीर्थ बन गए। वे थे खादूर, गोइंदवाल, अमृतसर और तरन तरा। गुरु अर्जुन ने जलंधर, दोआब और लाहौर गुरदासपुर क्षेत्रों को भी यात्रा की और वहां बड़ी संख्या में अनुयायी बनाए। गुरु अर्जुन के समय में कुछ ऐसी परंपराएं भी थी आरंभ हुई, जिन्होंने सिख संप्रदाय को पंजाब में लोकप्रिय बनाने में सहायता दी। उस समय तक गुरु का पद पैतृक तो बन ही गया था, इस समय में गुरु को देवत्व गुणों से युक्त समझा गया। यद्यपि किसी भी गुरु ने अपने को ईश्वर अथवा ईश्वरीय प्रतिनिधि नहीं कहा, परंतु तब भी जनसाधारण के मन में इस प्रकार की विचारधारा पनप गई। गुरु अर्जुन के समय में हुए कुछ परिवर्तनों ने इस विचारधारा के निर्माण में सहयोग दिया। गुरु अर्जुन से पहले के गुरु साधारण जीवन व्यतीत करते थे और धन भी एकत्रित करते थे, धन एकत्रित नहीं करते थे। गुरु अर्जुन ने प्रत्येक सिख से अपने आय का 1/10 हिस्सा अनिवार्य रूप से मांगा, इस कारण उनके पास धन की कमी नहीं रही। अकबर के शासनकाल में मुगल शासन के अस्थायित्व के कारण व्यापार और कृषि दोनों में ही उन्नति हुई। उत्तर पश्चिम के व्यापार मार्गों से विदेशी व्यापार पंजाब द्वारा ही होता था, जिसमें पंजाब के खत्री प्रमुख भाग ले रहे थे, इस कारण वे धनवान थे। उनमें से अधिकांश सिख संप्रदाय के अनुयायी थे, जिसके कारण सिख गुरु को उनसे बहुत धन मिलता था। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम से किसी आक्रमण के न होने की संभावना के कारण और कृषि में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो जाने से पंजाब में कृषि भी उन्नतशील स्थिति में थी, जबकि जाट किसानों में भी सिख संप्रदाय लोकप्रिय था। इस कारण गुरु की आय उनसे भी अच्छी हो जाती थी। ऐसी स्थिति में गुरु अर्जुन ने राजफी ठाठ बाट से दरबार लगाना आरंभ किया। इसके अतिरिक्त गुरु अर्जुन ने विभिन्न तीर्थस्थलों और वहां गुरु मंदिरों गुरुद्वारों की स्थापना की, आदि ग्रंथ की रचना की। अमृतसर के गुरुद्वारे में उसकी स्थापना कराई और संगतों के माध्यम से जनसाधारण से संबंध बनाए। इन परिस्थितियों में सिख संप्रदाय को आत्मविश्वास प्रदान किया और उसके साथ साथ गुरु के प्रति उनकी आस्था में भी वृद्धि हुई। धीरे धीरे गुरु की स्थान का श्रेष्ठता प्राप्त करता गया। गुरु अंगद और गुरु अमरदास के समय में भी गुरु के लिए सच्चा पादशाह शब्द का प्रयोग किया गया था। अब गुरु अर्जुन के समय में गुरु को देवत्व गुणों से युक्त माने जाने लगा और छत्र, तख्त, गुरु दरबार आदि शब्द भी गुरु के संबंध में प्रयोग किए जाने लगे। गुरु का तख्त, गुरु दरबार आदि, इससे सिख संप्रदाय की एकता और शक्ति में वृद्धि हुई। इस प्रकार गुरु अर्जुन ने सिख संप्रदाय को को योग्य नेतृत्व प्रदान करके उसे पंजाब में लोकप्रिय बनाने में बहुत सहायता की। गुरु अर्जुन ने अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के साथ साथ भौतिक और शारीरिक उन्नति करने का भी संदेश दिया था। उनका कहना था कि जो व्यक्ति शस्त्र लेकर विजय या मृत्यु का निश्चय करता है और जो व्यक्ति मृत्यु के अवसर पर सत्य नाम ईश्वर का स्मरण करता है वह कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा और निर्वाण प्राप्त करेगा। इससे स्पष्ट होता है कि गुरु अर्जुन अपने अनुयायियों से अवसर आने पर सशस्त्र संघर्ष की आशा भी करते थे। गुरु अर्जुन का एक मुख्य कार्य आदि ग्रंथ की रचना भी था, जिसने सिख संप्रदाय को एक धार्मिक ग्रंथ भी प्रदान किया जो एक धर्म की स्थापना और प्रसार के लिए आवश्यक होता है। गुरुओं के विचारों को संकलित किए जाने का कार्य गुरु अंगद और गुरु अमरदास ने भी किया था। गुरु अमरदास ने गुरु नानक और गुरु अंगद के विचारों को संकलित किया और उनके साथ अपने विचारों को भी संकलित किया था। उनको मिलाकर अर्जुन दो ग्रंथ तैयार किए थे जिन्हें गोविंदवाल पोथियों के नाम से पुकारा जाता है। गुरु अर्जुन ने उनके साथ अपने पिता पुत्र रामदास, स्वयं अपने और भक्ति मार्ग के हिंदू अथवा मुसलमान संतों के उन विचारों को जो सिख संप्रदाय के विचारों से मिलते थे संकलित किया। 1604 ईस्वी में यह कार्य पूरा हुआ। सभी गुरुओं और अन्य संतों के विचारों को एक ग्रंथ में संकलित किए गए ग्रंथ को आदि ग्रंथ पुकारा गया और उसको अमृतसर के गुरुद्वारे में प्रतिष्ठित किया गया। इस ग्रंथ का संकलन किया जाना एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करना था। सिख संप्रदाय का विस्तार हो रहा था, इस कारण स्वयं गुरु अथवा उनके प्रतिनिधि गुरु के विचारों को दूरस्थ क्षेत्रों तक फैले हुए जन समुदाय तक नहीं पहुंचा सकते थे। जब इस ग्रंथ की स्थापना विभिन्न गुरुद्वारे में हो गई तब गुरुओं की वाणी उसके माध्यम से जनसाधारण तक पहुंच गई। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता और नौवें गुरु तेग बहादुर के विचारों को भी आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया। यद्यपि उन्होंने अपने स्वयं के विचारों को एक पृथक ग्रंथ में संकलित किया जिसे दशम पादशाह का ग्रंथ कहते हैं। दशम ग्रंथ के नाम से पुकारा गया आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई रचनाएं पद्य में हैं जिन्हें गाकर पढ़ा जाता है। इसमें 12वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक हुए भक्ति मार्ग के विभिन्न संतों की रचनाएं हैं जिनमें सिख गुरुओं की रचनाओं का बाहुल्य है। सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की है। इनमें कुछ रचनाएं नामदेव और रामानंद जैसे संतों की भी है जो गुरु नानक से पहले हुए थे और कुछ ऐसे संतों के भी हैं जो विभिन्न सिख गुरुओं के समकालीन थे। इससे स्पष्ट है कि सिख गुरु मध्य युग में हुए हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन से गंभीरता से प्रभावित थे। आदि ग्रंथ सिखों के धार्मिक के ग्रंथ के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है अपितु प्रायः 600 वर्षों 1200 से 1700 ईस्वी की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का आभास भी इससे होता है। जब मुगल बादशाह जहांगीर सिंहासन पर बैठा तब उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया। वह भागकर पंजाब गया जहां गुरु अर्जुन ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतया कुछ आर्थिक सहायता भी दी। जहांगीर इस घटना के कारण गुरु से अप्रसन्न हो गया। संभवतया उसे गुरु के धार्मिक विचारों से भी चिढ़ थी क्योंकि गुरु हिंदू और मुसलमानों दोनों को ही अपना शिष्य बना रहे थे। जहांगीर ने गुरु पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना किया। गुरु ने इसे देने से इनकार किया। उनका कहना था मेरा अपना कोई धन नहीं है, मेरा धन तो गरीब और असहायों का है। जहांगीर ने गुरु की संपत्ति को जब्त करने तथा उन्हें कैद करने के लिए आदेश दिए। बंदी गृह में अर्जुन को कठोर रतनाएं देकर मार दिया गया। 1606 ईस्वी में जहांगीर का गुरु के प्रति यह व्यवहार अनुचित था। सिखों ने इसे मुगलों द्वारा अपने धर्म पर प्रथम आक्रमण माना। उस समय से सिखों को सशस्त्र रखने की आवश्यकता अनुभव हुई। गुरु अर्जुन की पीड़ायुक्त मृत्यु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय और गुरु को सैनिक संत बनने की भावना प्रदान की। गुरु हरगोविंद 1604 ईस्वी से 1644 ईस्वी। जब गुरु हरगोविंद ने गुरु की गद्दी संभाली उस समय उनकी आयु 11 वर्ष की थी। गुरु हरगोविंद ने धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न सिखों को सैनिक बनाने का कार्य आरंभ किया। उनके पिता गुरु अर्जुन ने अपनी मृत्यु से पहले उन्हें संदेश भेजा कि उनसे कहना कि वह शोक न मनाएं और पुरुषत्वहीन व्यक्ति की भांति रोएं बल्कि ईश्वर की प्रार्थना करें। वह अपने सिंहासन पर पूर्ण शस्त्र धारण करके बैठें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बड़ी से बड़ी सेना रखें। गुरु हरगोविंद ने अपने पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। 10 दिन तक उन्होंने ग्रंथ साहिब का पाठ कराया और अपनी कमर में 2 तलवार बांधकर वह गद्दी पर बैठे। उनकी 2 तलवारें धारण करने का अर्थ था भौतिकी मीरी और आध्यात्मिक फकीरी, दोनों शक्तियों का प्रधान होना था। उन्होंने अपने अनुयायियों से धन के स्थान पर घोड़े और शस्त्र लेने आरंभ किए। उन्हें मांस खाने की आज्ञा दी। उन्हें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी प्रदान की। उन्होंने 12 फीट ऊंचा तख्त अकाल बंगा का निर्माण किया और उस पर बैठकर अपने शिष्यों से मिलना आरंभ किया। उनका आशय था कि जिस प्रकार बादशाह तख्त पर बैठकर दरबार करता है उसी प्रकार गुरु पवित्र तख्त पर बैठने पर सम्मानित अधिकार रखता है। उन्होंने दरबार में नगाड़े बजाने की व्यवस्था को आरंभ किया जो राजसत्ता का प्रतीक था। उन्होंने अमृतसर किले की किलेबंदी की। उन्होंने शिकार करना भी आरंभ किया और धार्मिक गानों के साथ साथ सैनिक गानों का गाना बजाना भी आरंभ किया। इस प्रकार गुरु हरगोविंद ने सिखों में सैनिक भावना, सैनिक शिक्षा और स्वरक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की क्रियाएं आरंभ की। गुरु हरगोविंद द्वारा सिखों को सैनिक भावना प्रदान करना परिस्थितियों के अनुकूल था। गुरु अर्जुन ने यह समझ लिया था कि संभवतया अकबर के पश्चात मुगल बादशाह की धार्मिक नीति उदार न होती, क्योंकि अकबर के शासनकाल में ही कट्टर इस्लाम के समर्थकों ने उसकी धार्मिक उदारता की नीति का विरोध करना आरंभ कर दिया था। इस कारण गुरु अर्जुन ने अपने अनुयायियों के धर्म की सुरक्षा के लिए उन्हें सैनिक शिक्षा देना आरंभ कर दिया। जिन परिस्थितियों में गुरु अर्जुन की मृत्यु हुई वे भी स्पष्ट कर रही थी कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता है। इस कारण गुरु हरगोविंद ने सैनिक शक्ति एकत्रित करनी आरंभ कर दी। जहांगीर ने गुरु हरगोविंद से उनके पिता पर किए गए जुर्माने को मांगा। उनके मना करने पर उनको ग्वालियर के किले में बंदी बना दिया। 2 वर्ष या उससे भी अधिक समय गुरु हरगोविंद वहां रहे, परंतु उसके पश्चात उन्हें बिना किसी शर्त के छोड़ दिया गया। उसके पश्चात जहांगीर के काल में सिखों का कोई विवाद मुगलों से नहीं हुआ, परंतु शाहजहां के सिंहासन पर बैठते ही सिखों का मुगलों से संघर्ष आरंभ हो गया। शाहजहां के प्रारंभिक काल में मुगलों की धार्मिक नीति अनुदार रही। उसने सिखों की भावनाओं को उस समय चोट पहुंचाई जब लाहौर में स्थित अर्जुन बावड़ी को मिट्टी से भरवा कर वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया। बाद में एक साधारण घटना से सिखों और मुगलों का संघर्ष आरंभ हो गया। शाहजहां एक प्री बाज गुरु के खेमे में पहुंच गया। गुरु ने उसे पकड़कर अपने पास रख लिया और जब मुगलों ने उसे वापस मांगा तब उसे देने से इनकार कर दिया। उस समय थोड़े से झगड़े के बाद मुगल अधिकारी के मध्यस्थ बन जाने पर झगड़ा समाप्त हो गया, परंतु 1634 ईस्वी में अमृतसर के निकट सिखों और मुगल सेना की एक टुकड़ी में युद्ध हुआ। इससे हरगोविंद करतारपुर नामक स्थान पर चले गए जहां उन्होंने किलेबंदी कर रखी थी। तब भी मुगलों के समय समय पर झगड़े होते रहे। यह समझ कर कि अभी सिख मुगलों की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते और संघर्ष करने से धर्म की सुरक्षा करना कठिन होगा, गुरु हरगोविंद कीरतपुर चले गए जो कहलूर राज्य में एक हिंदू राजा के अधीन था तथा जहां मुगलों का प्रत्यक्ष शासन नहीं था। इस कारण गुरु हरगोविंद के बाद के समय में सिखों और मुगलों में संघर्ष नहीं हुआ। गुरु हरगोविंद ने एक विद्रोही के रूप में मुगल शासन से प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं किया। उनका संघर्ष मुगल बादशाह से तो क्या पंजाब के मुगल सूबेदार से भी नहीं हुआ। मुगलों से उनका संघर्ष स्थानीय झगड़ों के रूप में हुआ, परंतु धर्म की रक्षा के लिए सिखों को हथियार उठाने हैं यह शिक्षा उन्होंने सिखों को अवश्य प्रदान की। वह समझते थे कि उस समय तब सिख संप्रदाय प्रत्यक्ष रूप से मुगल प्रशासन से संघर्ष करने की शक्ति नहीं रखता था। इस कारण उन्होंने दो बार अपना निवास स्थान बदला और पंजाब के मुख्य प्रदेश को छोड़कर पहाड़ियों में चले गए। मुगलों से उनके संघर्ष का समय ही बहुत थोड़ा रहा। कुछ वर्षों को छोड़कर प्रायः 40 वर्ष के गुरु की गद्दी पर बैठे रहने के समय में उनका मुगलों से संघर्ष नहीं हुआ। अपनी समझदारी और नीति से गुरु हरगोविंद ने सिख संप्रदाय को मुगलों की विनाशकारी शक्ति से बचाया और साथ ही साथ सिखों में धर्म के लिए मर मिटने की भावना को जागृत करने तथा उसे बनाए रखने की में भी सफलता प्राप्त की। 1645 ईस्वी में कीरतपुर में ही गुरु हरगोविंद की मृत्यु हो गई। गुरु हर राय 1644 ईस्वी से 1661 ईस्वी। गुरु हरगोविंद ने अपने पुत्र के पुत्र हर राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु हर राय की उम्र उस समय 14 वर्ष की थी। गुरु हर राय ने भी अपने साथ सेना रखी और एक अर्ध स्वतंत्र सैनिक सरदार के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखा, परंतु उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों से अपने को पृथक रखा और यह ध्यान रखा कि मुगलों से उनका कोई संघर्ष न हो, परंतु मुगल शहजादा दारा सिकोह से उनका संपर्क हुआ। दारा सिकोह उदार धार्मिक विचारों का था तथा विभिन्न संप्रदायों के संतों से मिलता रहता था। इस प्रकार वह गुरु हर राय से भी मिला था और उनसे प्रभावित हुआ था। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ। दारा सिकोह शामूगढ़ के युद्ध में पराजित होकर जब पंजाब गया तब गुरु हर राय से मिला। संभवतया गुरु हर राय से उसे कोई सहायता नहीं मिली, परंतु तब भी औरंगजेब गुरु से अप्रसन्न हुआ और उसने उन्हें दिल्ली दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी। गुरु हर राय स्वयं तो औरंगजेब के दरबार में नहीं गए, परंतु उन्होंने अपने 14 वर्षीय पुत्र राम राय को वहां भेज दिया। राम राय ने औरंगजेब को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे कार्य कर दिए जिनकी सूचना मिलने पर गुरु राम राय ने उसे अपना उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और अपने 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। 1661 ईस्वी में गुरु हर राय की मृत्यु हो गई। गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी। गुरु हरकिशन ने बड़े भाई राम राय ने गुरु की गद्दी का दावा किया। उसे बादशाह औरंगजेब के समर्थन का विश्वास था। कुछ एक मसंद भी उनके पक्ष में हो गए। गुरु की गद्दी के विवाद पर निर्णय लेने के लिए औरंगजेब ने गुरु हरकिशन को अपने दरबार में बुलाया। गुरु हरकिशन दिल्ली आए, परंतु बादशाह से भेंट होने से पहले ही चेचक से उनकी मृत्यु हो गई। बादशाह ने गुरु हरकिशन को ही गुरु हर राय का उत्तराधिकारी स्वीकार किया, जिसके कारण राम राय देहरादून चले गए और वहाँ उसने अपनी पृथक गद्दी स्थापित कर ली। उसके अनुयायी राम राय कहलाए। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी। यह विश्वास किया जाता है कि अपनी मृत्यु से पहले गुरु हरकिशन ने गुरु हरगोविंद के सबसे छोटे पुत्र गुरु तेग बहादुर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तेग बहादुर ने 1635 ईस्वी में करतारपुर के युद्ध में मुगलों से युद्ध किया था, परंतु उनका झुकाव धार्मिक दर्शन की ओर अधिक था। इस कारण उसके पश्चात उन्होंने अपना ध्यान धार्मिक कृत्यों पर अधिक लगाया। उस समय गुरु की गद्दी के 22 दावेदार खड़े हो गए थे, परंतु सिख संप्रदाय ने तेग बहादुर को ही अपना गुरु स्वीकार किया। उस समय गुरु तेग बहादुर की आयु 43 वर्ष की थी। गुरु तेग बहादुर के सम्मुख कुछ नवीन कठिनाइयों थी। सिखों की एकता उस समय संकट में थी। मसंद, जो गुरु अर्जुन के समय में सिख अनुयायियों से धन एकत्रित करने के लिए नियुक्त किए गए थे, लालची हो गए थे और पिछले दो गुरुओं की कठिनाइयों का लाभ उठाकर स्वतंत्रता से व्यवहार करने के लिए उत्सुक थे। गुरु की गद्दी के 22 दावेदारों की उपस्थिति ने इस कठिनाई को बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त जब गुरु की गद्दी तेग बहादुर को प्राप्त हो गई, तब वे दावेदार गुरु तेग बहादुर के विरुद्ध हो गए। इस कारण गुरु तेग बहादुर को आरंभ में एक स्थान पर ठहरने में कठिनाई हुई। बाद में इसी कारण उन्होंने माखोवाल नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की, जहां आनंदपुर नामक नगर बसा। यह विचार प्रकट किया गया है कि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब से पहले से अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए बुलाया था और उन पर शांति भंग करने का आरोप लगाया था, परंतु अंबर के राजा जय सिंह के हस्तक्षेप के कारण उन्हें बादशाह ने माफ कर दिया। गुरु तेग बहादुर ने पूर्वी भारत का भ्रमण किया और जिस समय राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह को असम पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, उस समय वह बिहार और बंगाल में भ्रमण कर रहे थे। वह राम सिंह के साथ असम तक गए। वहां से वापस आकर वह प्रायः एक वर्ष तक किरतपुर में रहे। वहां से उन्होंने मध्य पंजाब में भ्रमण किया और पंजाब के किसानों के संपर्क में आए। धर्म प्रचार के अतिरिक्त उन्होंने किसानों के दैनिक जीवन की समस्याओं में भी भाग लिया, जैसा कि पहले किसी गुरु ने नहीं किया। उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया और किसानों से निडर रहने के लिए कहा। इससे किसानों में अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने की भावना आई। उन्होंने अत्याचारी जमींदारों और लगान अधिकारियों का विरोध करना आरंभ कर दिया। मुगल शासन के विरुद्ध जमींदार भी इस विरोध में सम्मिलित हो गए। उनमें अनेक ऐसे भी थे जिन्होंने विरोध में शस्त्रों का भी सहारा लिया। इससे मुगल अधिकारी गुरु तेग बहादुर के प्रति शंकालु हो गए। संभवतया गुरु की जनसाधारण के विद्रोह के लिए उत्तरदायी है। औरंगजेब की दृष्टि में यह एक बड़ा अपराध और खतरा था। मथुरा में जाटों ने विद्रोह किया था और नारनौल में सतनामियों ने विद्रोह किया था। एक गुरु के नेतृत्व में जो अपने को सच्चा पादशाह पुकारता था, पंजाब में हो सकने वाले विद्रोह को औरंगजेब बर्दाश्त करने के लिए तत्पर नहीं था। गुरु तेग बहादुर ने के विषय में मुगल प्रशासन और औरंगजेब की आशंका निर्मूल थी। गुरु तेग बहादुर ने कभी भी सैनिक शिक्षा पर बल नहीं दिया था और न ही अपने शिष्यों के सेना रखी थी। उनके विचारों में भी सैनिक प्रवृत्ति या संघर्ष की भावना प्रकट नहीं होती। वस्तुतः गुरु तेग बहादुर ने सैन्य संचालन, मुगल प्रशासन या बादशाह के विद्रोह की भावना को फैलाने का प्रयत्न कभी नहीं किया था। उनका मुख्य भाव तो निर्भय रहकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना था, परंतु तब भी उन पर राज्य के विरुद्ध होने का आरोप लगाया गया जो सर्वथा निराधार था। औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को कैद करने और उनको मृत्यु दंड देने का कारण पूर्णतया धार्मिक था। यह विश्वास प्रकट किया गया कि कश्मीर का मुगल सूबेदार उस समय औरंगजेब के आदेशों पर मंदिरों को तोड़ने और हिंदुओं को मुसलमान बनाने की नीति को कठोरता से लागू कर रहा था। उसने कश्मीरी पंडितों को इस्लाम और मृत्यु इन दो में से एक को चुनने के लिए 6 माह का समय दिया। कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से सलाह मांगी। उन्होंने उनसे औरंगजेब से मिलकर यह फर्त रखने के लिए कहा कि यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे। जब यह शर्त औरंगजेब को बताई गई, तब उसने गुरु तेग बहादुर को कैद करने का आदेश दे दिए। गुरु तेग बहादुर को कैद करके दिल्ली ले जाया गया। उनसे इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा गया, जिसके मना करने पर गुरु तेग बहादुर को 5 दिन तक विभिन्न यातनाएं देने के पश्चात विद्रोही घोषित करके कत्ल कर दिया गया। 1675 ईस्वी गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन होम दिया और यह सिख धर्म पर किया गया मुगलों का दूसरा गंभीर धार्मिक अत्याचार था। गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय और गुरु हरकिशन की धार्मिक रचनाएं नहीं की थी, गुरु तेग बहादुर ने इस कार्य को किया। उनकी कविताएं मुख्यतया वैराग्य की भावना से भरी हुई हैं। उनमें कहीं भी राजनीति का प्रभाव नहीं दिखाई देता। गुरु तेग बहादुर ने पर्याप्त समय उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यतीत किया, इस कारण उनकी रचनाओं पर ब्रिज भाषा का पूर्ण प्रभाव है। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी। गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के एकमात्र पुत्र थे। बिहार में पटना में 1666 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। 1672 ईस्वी में जब गुरु तेग बहादुर अपनी असम की यात्रा में से वापस पहुंचे, तब यह भी पंजाब पहुंचे। उन्हें साहित्यिक और सैनिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा दी गई। वह प्रायः 9 वर्ष के ही थे कि उनके पिता को कत्ल कर दिया गया। आरंभ में वह माखोवाल आनंदपुर में ही रही। पिता की मृत्यु के पश्चात उन्हें गुरु घोषित किया गया। उन्होंने आरंभ से ही सैनिक और शस्त्र एकत्रित करने आरंभ किए। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता के कत्ल कभी न भुला सके। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना और अत्याचारी का विनाश उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य रहा। उन्होंने औरंगजेब को धर्मांधता का उत्तरदायी माना। उन्होंने अपने को सच्चा बादशाह कहा। वह एक बादशाह की भांति दरबार करते थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के उद्देश्य और उसकी पूर्ति के साधनों में परिवर्तन कर दिया। अभी तक सिख गुरुओं का उद्देश्य धर्म प्रचार और धर्म का रक्षा मात्र रहा था। गुरु गोविंद सिंह ने सभी अत्याचारियों का दमन अपना एक मुख्य उद्देश्य बनाया। उनका कहना था कि ईश्वर ने उन्हें धर्म प्रचार, संतों की रक्षा और अत्याचारियों के विनाश के लिए पृथ्वी पर भेजा है। इसी कारण उनके लिए शस्त्र धारण करना आवश्यक हो गया, क्योंकि अत्याचारियों का विनाश बिना शस्त्र धारण किए हुए नहीं संभव था। उनका विश्वास था कि सिखों को एक नवीन उद्देश्य और उसकी पूर्ति के लिए एक नवीन साधन बनाने के लिए उनका जन्म हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने इसी कारण ईश्वर के गुणों की परिभाषा बदली। उनसे पहले के सभी गुरु ईश्वर को दयावान, न्यायवान, शक्तिवान आदि गुणों से युक्त मानते थे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि ईश्वर में इन गुणों के अतिरिक्त अन्य गुण भी हैं। उनके अनुसार ईश्वर शस्त्रधारी और अत्याचारियों का विनाश करने वाला भी है। गुरु गोविंद सिंह के अनुसार नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि पहले दुर्जनों का विनाश किया जाए। सभी गुरुओं ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान स्वीकार किया था, परंतु उन्होंने ईश्वर को दुर्जनों को नष्ट करने वाले के रूप में प्रस्तुत नहीं किया था। गुरु गोविंद सिंह ने इस कार्य की पूर्ति की। अपने इन विचारों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए उन्हें खालसा के निर्माण की आवश्यकता अनुभव हुई। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित कर दिया। सैनिकवाद की भावना सिखों में गुरु अर्जुन के समय में ही आरंभ हो गई थी। गुरु हरगोविंद ने उसे आगे बढ़ाया था। गुरु गोविंद सिंह ने उसे पूर्णतया प्रदान करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने संपूर्ण सिखों को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह लगाने के लिए कहा तथा प्रत्येक को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने के आदेश दिए। उन्होंने कहा, मैं चारों वर्णों के व्यक्तियों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने सिखों को खाने, पहनने और विवाह संबंधों के बारे में समानता और एकता प्रदान की। उन्होंने सिखों को शस्त्र शिक्षा लेने और युद्ध में पीठ न दिखाने के लिए कहा। उन्होंने सिखों से नाश करने वाले शिशु बालकों को मारने वालों तथा मितास, धीर मलियास और रामराय संप्रदाय के व्यक्तियों तथा मसंदों से पृथक रहने, उनसे कोई भी सामाजिक तथा विवाह संबंध रखने के लिए मना किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों में आत्मविश्वास और साहस उत्पन्न किया। एक शक्तिशाली खालसा सेना तैयार करने में सफलता पाई। गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध औरंगजेब ने कई सेनाएं भेजी। स्थानीय मुगल अधिकारियों ने भी उनसे निरंतर युद्ध किए और 5 बार उनके आनंदपुर में स्थित निवास का घेरा डाला, परंतु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लड़ते रहे। इस संघर्ष में उनके 2 बड़े पुत्र युद्ध में मारे गए और 2 छोटे पुत्र सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां के द्वारा कैद कर लिए गए और बार में दीवार में चुनवा दिए गए। अंत में गुरु गोविंद सिंह दक्षिण भारत चले गए और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही उत्तर भारत आए। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हुए उत्तराधिकार के युद्ध में उसके एक पुत्र बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह से सहायता मांगी। और वह उसके साथ दक्षिण भारत चले गए। वहीं पर गोदावरी नदी के तट पर एक पठान ने छुरा मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्रायः 2 माह पश्चात अपना अंतिम समय निकट जानकर उन्होंने अपने शरीर को चीता को सौंप दिया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी गुरु के उपदेशों को मानने वाले 5 सिख एकत्रित होंगे, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। उन्होंने कहा कि गुरुबाणी जो आदि ग्रंथ में दी गई है, सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। इसी कारण सिखों ने शीघ्र ही आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ कहना आरंभ कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा बनाया और उन्हें धर्म युद्ध की शिक्षा दी, परंतु यह नानक या अन्य गुरुओं की शिक्षा के विरुद्ध नहीं था। गुरु नानक के विचारों में ईश्वर को बुराइयों और दुराचारियों को नष्ट करने वाला स्वीकार किया गया था, और गुरु तेग बहादुर ने सत्य की शिक्षा के लिए संघर्ष करते हुए अहिंसात्मक तरीके से अपना जीवन दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने भी धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना आरंभ किया। गुरु अर्जुन ने अपने पुत्र को शस्त्र धारण करने के लिए कहा था और उनकी आज्ञा को मानकर गुरु हरगोविंद ने सिखों द्वारा शस्त्र धारण करने की परंपरा आरंभ की थी। गुरु गोविंद सिंह ने उसी परंपरा को पूर्णतया प्रदान की थी। वह उस समय की आवश्यकता भी थी, परंतु गोविंद सिंह के आधार पर पूर्णतया नैतिक और आध्यात्मिक था। इसी कारण सिख संप्रदाय और भौतिक शक्ति का आधार सर्वथा धर्म से जुड़ा रहा। पंजाब की राजनीति में जो स्थान सिखों ने प्राप्त किया, उसमें गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा का एक बड़ा हाथ था। परंतु गुरु गोविंद सिंह को योग्यता नहीं थी कि उन्होंने सिखों को एक कट्टर धार्मिक संप्रदाय में बदल दिया। वे विद्वान भी थे, उनके विचारों को 10वें पातशाह का ग्रंथ में संकलित किया गया। ये विचार 3 भाषाओं में लिखे गए, ब्रिज भाषा, गुरुमुखी और फारसी। इसका अर्थ है कि गुरु गोविंद सिंह को 3 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अतिरिक्त दर्शन ज्ञान और अध्यात्मवाद के विचारों के दृष्टि से भी 10वें पातशाह का ग्रंथ को एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इस प्रकार सिख संप्रदाय के प्रति गुरु गोविंद सिंह का योगदान बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहा।